हमने इस जीवन के सफ़र को तय करना है, ऐसी सोच ऐसी भावना से युक्त होकर जो कि कल्याणकारी है, जिससे अपना भला होता है, औरों का भला करते हैं, और वो सोच और भाव बने कैसे, उसके लिए महापुरुषों का संग होना ज़रूरी है, संतों का संग मिलना ज़रूरी है। इसीलिए नवदा भक्ति जब भगवान राम ने शबरी को समझाई तो तब भी यही कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि प्रथम भक्ति पहला ही कदम जो लेना है वो संतों का संग करना है। तो इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कथा के तेई अधिकारी सत्संगत जिनको अति प्यारी। इस प्रकार से एक सत्संग करना, महापुरुषों का संग करना, कि संगत करिए साधु की, अंत करे निर्भाव साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिनाओ। तो एक संतों का संग करना, ये महापुरुषों ने बताया है, इंसान को सही दिशा मिल पाए इसलिए ये साधन बनते हैं, मंजिल मकसूद को प्राप्त कर जाएं ये साधन बनते हैं, ये जरिया बनते हैं, ये माध्यम बनते हैं। इसलिए युगों युगों से महापुरुषों संतों की सोबत संग, इसकी महत्ता ये मानी गई है, क्या कि इंसान की सोच और इंसान की भावनाएं उस प्रकार की बन जाएं जिसके कारण इसका कल्याण भी हो और ये मंजिल मकसूद भी पाए और ये संसार के लिए वरदान भी बने। तो ये संग होना ज़रूरी है। जैसे कबीर जी के वचन और संत तुकाराम जी की वाणी निरंतर आप पढ़ते हैं, जिसमें हूबहू जो कबीर जी के वचन, तुकाराम जी के वचन हूबहू वैसे ही, लेकिन भाषा में अंतर है। तो उसमें कह रहे हैं कि गंगा के संग सलिता बिगड़्यो, सो सलिता गंगा होय निबर्यो, पारस के संग तांबा बिगड़्यो, सो तांबा कंचन होय निबर्यो, चंदन के संग तरवर बिगड़्यो, सो तरवर चंदन होय निबर्यो, और संतें संग कबीरा बिगड़्यो, सो कबीर रामे होय निबर्यो। कि इस प्रकार से बता रहे हैं कि गंगा में एक सलिता एक नदी जाकर मिल जाती है, संग हो जाता है गंगा का, तो सो सलिता गंगा होय निबर्यो, कि वो सलिता अब सलिता नहीं रही, अब वो गंगा से मिल गई है, गंगा का संग हो गया है, अब वो गंगा ही हो गई है, वो गंगा का ही रूप हो गई है। इसी प्रकार से पारस के संग तांबा बिगड़्यो, कि एक पारस का संग तांबे ने किया तो वो तांबा कंचन बन गया, क्योंकि पारस का संग मिला। इसी प्रकार से चंदन के संग एक तरवर बिगड़्यो, कि चंदन का संग मिला एक साधारण वृक्ष को, पौधे को, उसमें भी चंदन वाली महक समा गई। और संतें संग कबीरा बिगड़्यो, सो कबीर रामे होय निबर्यो, और संतों का संग मिलता है तो फिर संत ही नहीं बनते बल्कि रामे होय निबर्यो, एक परमात्मा का रूप बन जाते हैं। जैसे कहा भी है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो इस तरह से ये रूपांतरण हो जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि जैसे संगत तैसी रंगत, जैसा संग मिलता है तैसी ही रंगत इस मन पे चढ़ जाती है। अक्सर महापुरुष सत्संग में कहते हैं कि शराबी का संग करते हैं तो शराबी बन जाते हैं, दो चार दिन पहले अपने आप को रोक लेंगे, पांचवें दिन तो गिलास हाथ में आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से शराबी का संग करते शराबी बन जाएंगे। जिस जिस फील्ड में कोई है उसका लगातार संग करेंगे तो हमारी भी फितरत प्रवृत्ति वैसी ही बनती चली जाती है। और इसलिए कहते हैं अगर संगत की रंगत होती है तो फिर क्यों ना संतों की संगत की जाए, ताकि रंगत ऐसी चढ़े जिसके कारण आत्मा आत्म विभोर हो जाए, इस प्रकार से खिल उठे रोम रोम और पावनता और पवित्रता छलके हर प्रकार से। यही एक संत महात्मा भक्तजन ये प्रेरणा देते हैं कि ये संग होना ज़रूरी है। जैसे एक और स्थान पर भी कहते हैं कि किस प्रकार से एक तरवर की ही बात, उसके भी बारे में भी बताते हैं कि ऐसे एक सिलसिला, एक दृष्टांत जो देते हैं कि किस तरह से एक चंदन के ऊपर भी, कुल्हाड़ी के साथ भी किसी ने वार किया तो कहा गया कि उस कुल्हाड़ी को भी जब सूंघा गया तो उसमें भी चंदन की महक आया थी। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से एक महापुरुष संत जन वो बार बार इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते हैं, कहते हैं उस धूल, इस मिट्टी की मिसाल कि एक ऐसी धूल, ऐसी मिट्टी जिसके बारे में ये एक मिसाल दी गई कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचियो मिले नीच जल संगा, कि इस प्रकार से गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा कि आसमानों को धूल वो छू लेती है जिसको हवा का संग मिल जाता है। हवा का संग मिला तो वो धूल जो पाँव के नीचे थी, और हवा का संग ऐसा मिला कि वो हवा उस धूल को आसमानों पे उड़ा के ले गई, यानी कि उसको ऊंचाई प्रदान कर दी। अब उसी धूल के बारे में एक और संग, और वो मिसाल के तौर पर एक उदाहरण के रूप में इस तरह से बयान कर रहे हैं कि कीचियो मिले नीच जल संगा, कि वही धूल को जल का संग मिला तो वो धूल कीचड़ बन गई। एक तरफ पवन का संग मिला तो आसमानों तक धूल पहुंच गई, और दूसरी तरफ पानी का संग मिला, जल का संग मिला तो वो धूल व मिट्टी कीचड़ बन गई, और कीचड़ ने कपड़ों को, बदन को कीचड़ लगा जब कि किस तरह से वो ऐसा ही रूप बिगड़ गया। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन वो लगातार यही प्रेरणा युगों युगों से देते आए हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों का संग करना है, साकत का संग नहीं। एक साकत की संगत और साधु की संगत, कहते हैं कि वैष्णव की कुतिया भली, साकत की बुरी माए, वो नित सुने हरि नाम जस वो पाप बिसाहन जाए। ये भी एक और मिसाल साकत और साधु। कहते हैं कि एक साधु की कुतिया भली और साकत की बुरी माए, ये ऐसे वचन जो एक हमारे सामने आते हैं कि एक साधु की कुतिया भली, और उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि वैष्णव की कुतिया भली, साकत की बुरी माए, वो नित सुने हरि नाम जस वो पाप विसाहन जाए। कि एक साकत की, एक साधु की कुतिया कहती है वो नित सुने हरि नाम जस, क्योंकि साधु हरि का यश कर रहा है, कोई वार्तालाप करने आया है, कोई मिलने आया है, उसको भी सत्य भक्ति की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं मालिक का, निराकार का, तो वो कुतिया पास बैठी, कम से कम उसके कानों में तो जा रहे हैं, वो हरि यश के रूप में शब्द उसके कानों में पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ साकत की बुरी माए, यहाँ तक कह दिया कि एक साकत जो ऐसी पाप प्रवृत्ति वाला होता है, जो इस प्रकार से एक बुरा ही बुरा सोचता है, जो हमेशा ही तृष्णाओं और खुदगर्जियों में पलता है, जिसकी सोच विषैली होती है, जिसकी भावना विषैली होती है, जो जहर से भरा होता है, जो बढ़ता है तो बुराई की तरफ बढ़ता है, अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ता है, नेकी की तरफ नहीं बढ़ता है, जो सब कुछ भी हम अंधकार में पहलू सोच सकते हैं तो वो साकत का होता है। जो साधु की कदर नहीं करता है, जो परमार्थ की कदर नहीं करता है, जो परमात्मा की कदर नहीं करता है, जो सत्य की कदर नहीं करता है, जो गलतान है ऐसी गंदगी में विष्ठा में पलता है, उसको साकत कहा जाता है कि उसी तरफ ही उसका ध्यान होता है, विष्ठा की तरफ। एक भूंड और एक भंवरा, भंवरा बैठता है फूल के ऊपर, उसका रस लेता है, और दूसरा जो है वो जाकर विष्ठा के ऊपर बैठता है, गंदगी के ढेर के ऊपर बैठता है। इसी प्रकार से देखने में तो एक सहज जैसे नज़र आते हैं, भंवरा है या भूंड है, देखने में एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन दोनों की फितरत और दोनों की प्रवृत्ति में ज़मीन आसमान का अंतर, कि वो रस ले रहा है फूल के ऊपर जा बैठा है, और दूसरा विष्ठा के ढेर के ऊपर जा बैठा है, और विष्ठा के ढेर पे बैठा है, गंदगी के ढेर पे बैठा है, उसके बदन के ऊपर भी लग गई वो गंदगी, और फिर जहाँ पर वो जाकर बैठा, जिस शरीर पे बैठा, वो गंदगी के साथ ले जाता है बीमारी, और वो बीमारी उस इंसान जिसके ऊपर जा बैठा उसके बदन में भी बीमारी फैला दी। तो इस तरह से ये साकत की बात हो रही है। तो महापुरुष संत जन इसी तरह से कहते हैं कि मारी मरुं कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओ झूले ओ चीरिए साकत संग ना हेर। कि मारी मरुं कुसंग की, कुसंग कि केले निकट जो बेर, केला जानते हैं आप पत्ता होता है उसका चौड़ा सा, और उसके साथ अगर बेरी उगाए तो उसके कांटे होते हैं, तो ओ झूले ओ चीरिए साकत संग ना हेर। कि वो झूलता है जब वो बेरी के वो कांटे लगते हैं उस केले के पत्ते को, और उस पत्ते को चीर डालते हैं। इसी प्रकार से ये कुसंग, जैसे एक और स्थान पर कहा है कि संग कुसंगी बैठते तब पूछे धर्म राय, कि कुसंग साकत, साकत ऐसा है जैसे लसन की खान। साकत के बारे में तो क्या क्या कहा गया है, अगर साधु के बारे में इतना कुछ कहा गया है तो साकत के बारे में भी बहुत बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि उजाले और अंधकार को कंपेयर तो किया ही जाएगा, और युगों युगों से हो रहा है, तो ये कंपैरिजन तो होता ही है, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, प्यार और नफरत, लोभ लालच और तप त्याग सेवा, इसी प्रकार से साधु और साकत, इस तरह से इनको कंपेयर किया जाता है। और उस कंपैरिजन में विशेषता युगों युगों से साधु प्रवृत्ति की ही मानी गई है, ना कि साकत की। साकत डूबता है और जो उनका संग करता है, जो उनकी फितरत प्रवृत्ति अपना लेता है, धारण कर लेता है, उसका भी फिर डूबना निश्चित होता है, और साधु खुद पार उतरता है, औरों को भी पार उतारा करने में वो सहायक सिद्ध होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये प्रेरणा देते हैं कि संतों का संग करें, और संतों के संग करने से ऐसी हमारी सोच, ऐसी हमारी भावना बनती है, ऐसी हमारी फितरत बनती है, क्योंकि संतों की शिक्षा प्रेरित करती है कि हम प्यार से जिएं, हम विनम्र भाव वाले बने, हम सबर संतोख वाले बने, हम चतुराइयों और चालाकियों का सहारा लेकर दूसरों को लूटें नहीं, हम वैसे भोलेपन से युक्त रहें, ऐसी एक मन में सफाई हो, सच्चाई हो, और इस प्रकार से हम बदियों से बाज आएं, नेकी से युक्त हों, हम हमेशा ही मानवता इंसानियत की डगर पर चलते रहें, मन का नाता इस मालिक से जोड़े रखें, मन रूपी पात्र में हम दिव्य गुण भरते चले जाएं। इस प्रकार से ये महापुरुषों का जब संग करते हैं तो महापुरुष हमें तप त्याग सिखाते हैं, सेवा करना सिखाते हैं, इस प्रकार से सेवा के जज्बे प्रदान करते हैं। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। तो आओ साध संगत, कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि ऐसे एक संग करते हैं तो हमारी भी फितरत और प्रवृत्ति बनती चली जाती है, जो हमें यश दिलवाती है और जो मार्ग कल्याणकारी है। साकत की संगत नहीं, मनमुख की संगत नहीं। वहाँ तो ये कहा है कि दूरे जाइए भाग, कि एक साधु को दे, एक साकत को देखें तो दूरों जाइए भाग, ये महापुरुषों के कथन है। दूरों जाइए भाग का मतलब यही है कि उसके असर को नहीं ग्रहण करना, कि जो साकत में प्रवृत्ति है उसको नहीं ग्रहण करना है, उसको नहीं अपनाना है। इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन ये पुकार पुकार कर कहते हैं, और वाक्य ही भाग्यवान होते हैं वो जिनको ऐसी संगत मिल जाती है। जिस प्रकार से कहते हैं कि बड़े भाग्य मिले सत्संगा, कि वाक्य ही बहुत भाग्य हैं जो सत्संग मिल गई, ऊंचे भाग्य हैं कि सत्संग मिल गई, महापुरुषों का संग मिल गया। और महापुरुषों की संगति वो लोचते हैं, बार बार सत्संग करने की मन में भावना पैदा होती है कि संत सत्संग करने को मिले, महापुरुषों का संग करने को मिले, महापुरुषों के ऊंचे विचार सुनने को मिले, महापुरुषों की चाल का अनुकरण करें। इस प्रकार से दृष्टि बने, भावना बने, ये एक भक्त हमेशा ही ये लोचते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि सही मिलाई जिना मिलिया तेरा नाम चेतावे, कि दातार ऐसों से बार बार मिला जिनके मिलाप से तेरा ध्यान आ जाता है। अब साकत और मनमुख की संगत से तो तेरा ध्यान नहीं आता, वो तो तेरा जिक्र ही नहीं करते हे निराकार, वो तो तेरा गुणगान ही नहीं करते, वो तो सब कुछ संसार और विपरीत भावना से खुद युक्त होते हैं और प्रेरणा भी उसी तरफ बढ़ने की देते हैं। तो इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि सही मिलाएं जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, कि ऐसों का मिलाप करा दातार बार बार जिनके मिलाप से तेरा ध्यान आ जाता है, तेरी तरफ ये एहसास जाग जाता है इस मन को। इसलिए ऐसों का संग सही मिलाएं, उनका मिलाप करा, बार बार करा, जिनके मिलाप से तेरी तरफ ध्यान आ जाता है, तेरा एहसास जाग जाता है। तो अब साध संगत, इसी प्रकार से ये महापुरुषों संतों की वाणी ये यही है, एक बताती है, इन्हीं पहलुओं को उजागर करती है, ताकि हर इंसान जीवन जीने का ये सलीका ये प्राप्त कर सके, ताकि सही ढंग से वो जीवन की यात्रा को तय करे, उसका जीवन निखरा निखरा हुआ हो, उसके जीवन में नेकियां हो, उसके जीवन की असली सुंदरता हो, जो सीरत के कारण होती है। एक होता है, होती है सूरत, एक होती है सीरत, और सीरत अच्छी हो तो वो सूरत से भी कहीं अधिक उसमें एक सुंदरता आ जाती है। लेकिन अगर सीरत अच्छी ना हो, सूरत अच्छी हो लेकिन फिर भी वो सूरत सूरत नहीं रहती, वो खूबसूरती नहीं होती है, वो बदसूरती होती है। सीरत का अच्छा होना ज़रूरी है। इस प्रकार से जिसकी सीरत अच्छी होती है वही एक सुंदरता को प्राप्त करता है, उसी में ही वो सच्ची खूबसूरती होती है, जिसको कहते हैं इनर ब्यूटी। इनर ब्यूटी कि एक अंदर की ऐसी खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती यानी कि एक ऐसी सुंदर भावनाएं, ऐसे दिव्य गुण, मन में ऐसे भाव, मन की ऐसी तरंगें, इनर ब्यूटी, वो एक ऐसी खूबसूरती, उसकी बहुत महत्ता होती है। और अगर बाहर आउटर ब्यूटी हो लेकिन अंदर मैली मैल हो, अंदर कड़वाहटी कड़वाहट हो, अंदर सब कुछ विपरीत भावनाएं हो, अंधकार छाया हो मन में, विष्ठा ही विष्ठा हो, विष ही विष हो, वैर हो, नफरत हो, क्रोध हो, ये सब कुछ भावनाएं हो, तो फिर वो बाहर की खूबसूरती क्या करेगी। तो इसलिए सीरत, अच्छी सीरत ये जिसकी भी होती है वो वास्तविकता में सुंदरता को प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुष ऐसी सुंदरता चाहते हैं कि ये मन की सुंदरता हो, मन के में ऐसे भावनाएं हो, इस प्रकार से एक शोभा बने, यही एक महापुरुषों का संग ये प्रदान करता है। लेकिन संग करना ज़रूरी है, ये प्राप्ति करना ज़रूरी है, वो भावना अपनाने की, सीखने की रखना ज़रूरी है। तो ये संग इस प्रकार का होना कि वो जो शिक्षा दी जा रही है उसको धारण करना, इसको संग कहते हैं। जैसे एक मिसाल जो ध्यान में आती है कि एक किसी ने सुन रखा था कि एक पारस होता है, ऐसा पारस पत्थर कि उसके साथ लोहा छू जाए तो वो सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है, देखने की अभिलाषा, क्योंकि ऐसी कोई भी बात सुने तो मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है, एक इंक्विस्टिवनेस हो जाती है कि देखें तो सही, और उसके मन में भी यही चाहना। लेकिन कहीं से भी अनेकों से पूछा, नहीं पता चला कि पारस पत्थर कहाँ पर मिल सकता है। एक दिन किसी ने बता दिया कि एक यहाँ पर महात्मा है, उसके पास है पारस, पता भी बता दिया, वहाँ तक चल के चला गया और वहाँ द्वार खटखटाया, साधु ने दरवाज़ा खोला, भीतर निमंत्रण दिया, चला गया अंदर और अपनी वो जिज्ञासा जाहिर कर दी कि महात्मा, मैंने सुना है कि आपके पास पारस पत्थर है, कई बरसों से कईयों से पूछ चुका हूँ कि पारस पत्थर के बारे में सुना तो है लेकिन देखा नहीं है, तो देखने की अभिलाषा, तो आपके पास है तो कृपा कीजिए मुझे दिखा दीजिए। तो कहने लगा, अच्छा दिखा देता हूँ। दूसरे कमरे में गया, लाया एक लोहे की डिबिया, निकाली, सामने रख दी और वो इंसान उसी वक्त देखते ही उठ गया, खड़ा हो गया अपने स्थान से। कहने लगा, महात्मा क्या हुआ, आप तो जिज्ञासा लेकर आए थे पारस पत्थर दिखाने के लिए और आप तो खड़े हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए। तो एकदम से वो कहता है, बस रहने दो, सब बात समझ में आ गई, सब झूठ बेकार। कहने लगा, हुआ क्या है? कहने, ये सामने क्या रखा है? साधु कहता, लोहे की डिबिया। तो मैं यही तो परेशान हो गया हूँ कि सुना है कि पारस के संग लोहा छू जाए तो सोना हो जाता है, तो ये डिबिया जिसमें से आप निकाल कर दिखाएंगे, ये डिबिया तो सोना हुई नहीं, तो सब बेकार। तो आगे से साधु कहता है, थोड़ा रुक तो सही, इतना उतावला क्यों, इतना भी उतावलापन क्या होता है, रुक तो सही। और डिबिया खोली और उसमें रुई थी और रुई में से लपेटा हुआ वो पारस निकाला। तो आगे से महात्मा ने उसको बताया कि भले ही ये लोहे की डिबिया में ही पड़ी हुई थी ये पारस का पत्थर, लेकिन बीच में वो रुई थी जो इसका संग नहीं करने दे रही थी, इसके कारण ये लोहा लोहा ही रहा, ये सोना नहीं बन सकी ये डिबिया। इसी प्रकार से संग इसको कहते हैं कि मन जुड़ा रहे इस निराकार के साथ भी, इसका एहसास भी रहे और इस मन में भावनाएं भी स्थापित हों। अगर प्रेम का महापुरुष जिक्र कर रहे हैं तो प्रेम मन में बस जाए, अगर महापुरुष निम्रता से युक्त होकर जीवन जीने की बात कहते हैं तो मन में वो विनम्रता छा जाए, मन को विशाल बनाने की बात कर रहे हैं, विशालता की बात कर रहे हैं तो मन विशाल हो जाए। इस प्रकार से ये महापुरुष कहते हैं कि ये प्रताप है संग करने का। तो अवसा संगत, ऐसा संग हर किसी को मिल जाए, यही एक महापुरुष संत जन ये प्रेरणा देते हैं, ये संदेश देते हैं, ये आवाज़ देते हैं। लेकिन उसको सुनकर अगर उसकी तरफ कोई संजीदा हो जाए, उसको उस संजीदगी से ले ले, फिर तो वो मालामाल हो जाता है, फिर तो उसका पार उतारा हो जाता है। लेकिन अगर उसको सुना और माना नहीं, उसको अपनाया नहीं, उस तरफ कदम बढ़े नहीं, तो फिर उसमें किसका गया, किसने लाभ नहीं उठाया, किसने गंवाया, ये हम भली भांति इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए एक सच्ची खुशी की महसूसियत करने के लिए एक वो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, एक प्यार से जीना ज़रूरी है, निम्रता से जीना ज़रूरी है, दासों के दास बनना ज़रूरी है, एक गुरसिख का दूसरे गुरसिख का सत्कार करना ज़रूरी है, सर आँखों पर बिठाना ज़रूरी है, मन बच कर्म करके एक होके चलना ज़रूरी है, तभी वास्तविकता में वो अवस्था बनती है। सात संगत जी धन्य।